ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਤਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੇ ਫਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੰਤਰ ਔਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋ ਵੀ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਚੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਅਖੀਰਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਐਸਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਉਤਨੇ ਸਰੀਰ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੇ ਭੋਗਤੇ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੋ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਤੇ, ਜਹ ਵੇਦਾਂਤ ਕਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਕਾ। ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋ ਵਾ ਇਸ ਲੋਕ ਮੇ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਮੇ ਗਮਨ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗਾ ਫਿਰ, ਜਨਮ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨ ਮੇ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਆ, ਉਸੀ ਸਥਾਨ ਮੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸੀ ਸਥਾਨ ਮੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਪਤ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਗਮਨ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਹ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਸੰਭਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਜਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਅਨੇਕ ਸਰੀਰ ਕਾ ਆਰੰਭਕ ਏਕ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਹਾਂ ਅੰਤ ਸਰੀਰ ਮੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪੂਰਵ ਸਰੀਰ ਮੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਾਹੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸਰੀਰ ਕਾ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਅਸਕਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਅਸਕਤ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਦਤਾ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ। ਔਰ ਭੇਦਵਾਦੀ ਵਚਨ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭੇਦਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ, ਭੇਦਵਾਦੀ ਵਚਨ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭੇਦਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਬਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਮੇ ਅਸਕਤ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਧੀ ਮੰਦਿਤਾ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੇਦਵਾਦੀ ਵਚਨ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਭੇਦਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੇਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਨੋ ਗਿਆਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੋਤੇ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਧਨ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਮਨਨ ਨਿਰਧਿਆਸਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਪਰ। ਜੈਸੇ ਵਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਾਂਤ ਸੁਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵੇਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਡੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀਏ ਜੋ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕ ਹੈ ਤਿੰਤੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਜੈਸੇ ਵਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕ ਕੀਏ ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਾ ਫਲ ਏਕ ਸਰੀਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕ ਕਰਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੀਰ ਕਾ ਪਾਤ ਹੋਏ ਕੇ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਮੇਂ ਕੀਏ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕ ਤੇ ਗਰਭ ਵਿਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਅਨੰਤਰ ਅੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੀਰ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੇ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਨਿਰਵਾਹਕ ਹੈ ਸੋਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਜਨ ਅਧਿਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਸ਼ੰਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਵ ਅਤਿ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਵ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਵ ਅਤਿ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਅਤਿ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਵ ਅਤਿ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੰਬ ਮਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਨਿਰਾਲੰਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਗਾੜੀ ਰੱਖੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਵ ਅਤਿ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੰਬ ਮਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਕਿਸੇ ਅਲੰਬਨ 'ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਚਾਹੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਲੰਬ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਮਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਜਦਪਿ ਸਮਾਧੀਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਹੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਥਾਪਿ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਮਨ ਕਾ ਵਿਜੇ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਅਸ਼ਟੰਗ, ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੱਸੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਅਸ਼ਟੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਇਨ ਆਸ਼ਟ ਅੰਗਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਅਸ਼ਟ ਮੈਨੇ 8, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, ਇਹ 8 ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, ਇਹ 8 ਅੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अब फिर की होएगा, फिर विकल सविकल्प सविकल्प समाधि अष्ट अंग ते समाधि होवे हैं। देखो अब एक एक नू लैके चल रहे हैं, की कहेंगे जम कितने हैं, जम किनू कहेंगे, जम निजम दस्या ना, पहला दस्या जम निजम, पहला जम फिर निजम फिर आसन, ऐसे करके दस्या है ना, वो जम नू किनू कहेंगे, देखो अहिंसा, अहिंसा मैंने किसी की हत्या नहीं करनी, पुरुष की जीव जीव मात्र दी जीव मात्र चीटी दी भी हिंसा नहीं करनी, चीटी ने भी मारनी नहीं, उन्हूं कहेंगे अहिंसा, फिर अहिंसा विच आएगा ना, अहिंसा सत्य सत बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, पांच है ना ब्रह्मचारी और अपरिग्रह, अपरिग्रह परिग्रह मैंने धन दौलत नहीं कट्ठी करनी भंडारे वो जेडे दूजे माल, उन्होंने की कहांगे ये पांच जम है, इन्होंने कहते पांच जम केड़े केड़े, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। अब निजम केड़े हैं, सोच मैंने पवित्रता, नानक सच सुच पाइए तेह संतन के पास है, सोच संतोष, संतोष भी होना चाहिए, फिर तप करो थोड़ा जहा, स्वाध्याय मैंने पठन पाठन भी करो वेद शास्त्रों का, उन्होंने कहते स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर दे आसरे रहना, आप जमीन जायदाद दे आसरे हैं, ईश्वर ने तो भुली बैठे हैं, जा बैंक बैलेंस दे आसरे हैं, ईश्वर का आसरा कितने ले रहे, आप ले रहे ईश्वर का आसरा, जा अपने पुत्रां का आसरा लै, तीन पोत्या गल ही कोई नहीं, हाँ जा ला मेरा तो फलाना मंत्री है, कोई गल ही नहीं, ईश्वर नूं तां आपां भुली बैठे हैं, ईश्वर का सहारा नहीं मन रहे, तो फिर आगे वाले यह हो गए निजम पंज केड़े केड़े, सोच सोच मैंने पवित्रता, अंदर बाहर दी एक नहीं, भीतर बाहर दोनों पवित्रता, अंतःकरण पवित्र चाहिए बाहर दी भी सुच पवित्रता, ये नहीं है गए चलो लैटरन गए बस हो गया, शुद्धि पूरी, हाथ पैर स्नान होना चाहिए, ऐसा नहीं जो भी करो, उन्हों कहते सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये पांच निजम है। अब सुनो ज्ञान ज्ञान समुदाय ग्रंथ में दस प्रकार के जम और दस प्रकार के निजम कहे हैं, सो प्राण की रीति से कहे हैं, वेदांत संप्रदाय में जम निजम पांच पांच के वेद हैं, जम निजम ने पांच पांच वेद हैं, कितने दस प्रकार के कहे हैं, वो प्राण के हिसाब से कहे हैं। आसन के भेद अनंत हैं, अब की हो गए दो हो गए ना, केड़े केड़े जम और निजम, अब तीसरा केड़ा आसन, आसन दे सुन लो, आसन के भेद अनंत हैं, तीन में स्वस्तिक गोमुख वीर कुर्म पद्म कुटकुट उत्तान कुर्म कुर्मक धनुष मत्स्य प्रच्छम तान मयूर सब सिंह भद्र और सिद्ध इत्यादि के 84 आसन योग शास्त्र में लिखे हैं, 84 आसन प्रसिद्ध हैं योग शास्त्र में, ये योग शास्त्र का चल रहा प्रकरण, ठीक है, योग शास्त्र में ये 84 आसन लिखे हैं, ये मुख्य मुख्य जिहड़े प्रसिद्ध सी उन्होंने नाम लेते, इन्हों के विचों जो सारे प्रसिद्ध है वह कौन है, देखो तीन में तीन के लक्षण भी तहां लिखे हैं, इनके लक्षण भी दसे हैं, ऐसे बैठना ऐसे ऐसे सारे ग्रंथ के विस्तार बैठे तहां वेदांत में अत्यंत उपयोगी नहीं जाते लक्षण लिखे नहीं, अंदा वेदांत में इन्हों की जरूरत भी नहीं, इस वास्ते लिखे भी नहीं, और ग्रंथ बड़ा हो जाएगा ग्रंथ विस्तार भैसे ता भी नहीं लिखे, दो कारण है, एक तो ग्रंथ बड़ा हो जाएगा ता नहीं लिखे, दूसरा कहता वेदांत में इन्हों की उपयोगता भी नहीं, इस वास्ते भी नहीं लिखे। तीन में भी सिंह भद्र पद्म और सिद्ध जे चार आसन प्रधान हैं, तीन 84 में भी सिद्ध आसन अत्यंत प्रधान है, अब पहले 84 दसे 84 के विचों 15-16 दसे 16-16 तो चार कढ़ ले चावां दे विचों में एक दस दिता सिद्ध आसन, अब सिद्ध किनू कहिंदे है, सिद्ध आसन किनू कहिंदे है ये भी नहीं पता ना, चलो वह भी दसणगे। सिद्ध आसन अत्यंत प्रधान है तांका जाहे लक्षण है। अब लक्षण सुनो, वामपाद की एड़ी गुदा मेड़ू के मध्य सीवन में दबाई के धरे, ठीक है। दक्षिण पाद की एड़ी मेड़ू के ऊपर दाब के धरे, भ्रुकुटी के अंतर दृष्टि राखे, स्थानु की न्यायी सरल निश्चल शरीर से शरीर ते थिरकु सिद्ध आसन कहे हैं। भ्रुकुटी में ध्यान होवे, एक अड्डी दोनों इंद्रियां दे विच जड़ी स्थान है उत्थे लगी है, दूसरी ऊपर रखी होवे, जां दायां पैर थल्ले होवे जां बायां पैर ऊपर होवे, दो प्रकार दा है, जिद्दां भी तुसी लगा सकदे लगा लेना, जे नहीं समझ लगेगी तो अकेले भी दस दांगे, ठीक है ना। इनू कहिंदे आ ते बैठना कैसे है, स्थानु की तरह, स्थानु मैने ठूठ, सुक्की लकड़ नहीं मुड़ जा पिया होवे तो हिलदा किसे, ऐसे बैठे ता ही तो गल बनेगी ना। स्थानु की तरह सरल, और फिर कैसे सरल, कोई मन च तरंग नहीं आवे, आवे तो हटाउंदा जावे, इनू कहिंदे सिद्ध आसन। कोई ऐसा कहे है वाम पाद की एड़ी सीवन में नहीं लगावे किंतु मेड़ू के ऊपर लगावे, ताके ऊपर दक्षिण एड़ी धरे, और पूर्व की न्याय जय सिद्ध आसन ही अति प्रधान है। काहे ते कितने आसन तो रोग नाश के हेतु हैं। कई आसन देखा नहीं, वो जड़ा की नू कहिंदे आ रामदेव, वो के योगा दसदे ना, वो कादे वास्ते दसदे आ, वो मुक्ति दे आसन नहीं है, वो शरीरक शुद्धि वास्ते हैं, रोग रोग वास्ते, यही कह रहे हैं। देखो काहे ते कितने आसन तो रोग नाशक के हेतु हैं, कितने आसन तो रोग नाशक के हेतु हैं, और कोई आसन ऐसे हैं प्राणायाम आदि का समाधि के अंग जितने हुए हैं, और सिद्ध आसन समाधि काल में हुए हैं। सिद्ध आसन जब लगेगा तभी समाधि लगेगी, बाकी आसन समाधि भी नहीं लगनी, ठीक है ना। जहाँ ते अति प्रधान है जाही को वज्रासन मुक्ता आसन गुप्तासन कहे हैं। आसन सिद्धि ते अनंतर, अब आसन सिद्ध हो गया, आसन सिद्ध कदों होगा, जो ढाई घंटे तुसी एक आसन ते बैठ गए, ऐसे थोड़ी होगा, दस मिनट बैठे तो फिर पैर बदल के ऊपर कर लिया तो दूजा ऊपर कर लिया, माड़ी जी पिट ला ली, हाँ माड़ी जी पिट ला ली, सराहना ला लिया, तकिया ला लिया, ऐसा नहीं। आसन सिद्धि ते अनंतर, आसन सिद्ध हो गया फिर उस तो बाद पहला की करे, जम करे फिर निजम करे, पांच जम पांच निजम, फिर आसन पक्का करे, आसन तो बाद फिर की आया, आसन सिद्धि ते अनंतर प्राणायाम भी करे, फिर प्राणायाम की बारी आऊगी, सीधा ही बैठ ही तेनू प्राणायाम सिखावा की हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ आसन सिद्धि से अनंतर प्राणायाम भी करे, सो प्राणायाम बहुत प्रकार है, तथापि संक्षेप ते जह लक्षण है। देखो प्राणायाम दो प्रकार दा है, एक ते सज्जे पास्यों साह लेके तीन है ना, केड़े केड़े, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, ए सज्जे पास्यों साह भरो, इनू बंद करके ऐसे, इनू बंद करके इधरों छड्डो थोड़ा चिर रोक के, एक जां दूसरा इधर से लैके उपर खिचो सा इधर नू छड्डो, ये दो प्रकार दा प्राणायाम है। नहीं वो चीज़ अलग है, लोम लोम बहुत तेज होंगे, हाँ है तो इदा ही आ, वो जड़ा है ना लोम लोम बहुत तेज होंगे। चलो सुनो कितने चल गया ना, देखो नासिक नासा नासिका वाम बाग क्षेत्र में एड़ा नाम नाड़ी ते वाजु को पूर्ण करे, पूर्ण मैने साह लवे पर के अंदर, ताकू पूरक कहे हैं, जो तो साह पूर्ण कर लिया तो उन्होंने कहेंगे पूरक, ठीक है। दक्षिण दक्षिणा ते त्यागे ताकू रेचक कहे हैं, दक्षिणा मैने सज्जी तो सज्जी नाशिका ते साह लिया और खब्बी ना छड़ देता, ठीक है ना, ये की हो गया रेचक, पहला पूरक कर लिया फिर रेचक कर लिया, ठीक है। सुषमणा ते रोके ताकू कुंभक कहे हैं, थोड़ा चेर अंदर रोकिया, वो रोकन की कहांगे कुंभक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही है। इस रीति से पूरक रेचक कुंभक प्राणायाम कहे हैं सो दो प्रकार का है, एक अगर्भ है और दूसरा सगर्भ है। प्राणायाम कई प्रकार का है, फिर उन्होंने विच्चों दो प्रकार जिहड़े मुख्य है वह ले ले, एक अगर्भ दूसरा सगर्भ। प्रणव के उच्चारण सहित प्राणायाम अगर्भ कहिए है। प्रणव मैंने ओम, साह लिया नाल ओम का उच्चारण कर देता, एक पासे दबा करके साह लिया नाल ओम अंदर उच्चारण किया, उनकी कहांगे अगर्भ ना बोलिया नहीं अंदर से, उन्हों कहते अगर्भ प्राणायाम। और प्रणव के उच्चारण सहित प्राणायाम सगर्भ कहिए है। एक ओम तो उच्चारण तो बगैर जी साह भर लिया अगर्भ हो गया, और ओम उच्चारण करके जरा भरया सगर्भ हो गया, ठीक है। हाँ जी, रहे तो अगर्भ। विषयन में सकल इंद्रियन के निरोध को प्रत्याहार कहे हैं। प्रत्याहार किनू कहते हैं, ये तो हो गया प्राणायाम, जम निजम आसन प्राणायाम। अब प्रत्याहार किनू कहते हैं, विषया ते संगल इंद्रियन के रोकने को प्रत्याहार कहे हैं, ठीक है। अंतराय सहित अंतःकरण की स्थिति धारणा कहे हैं। अंतराय माने फर्क, फर्क तो सहित जड़ी अंतःकरण की स्थिति है उनकी कहांगे धारणा। अंतराय रहित अद्वितीय वस्तु विषय अंतःकरण का प्रवाह ध्यान कहे हैं, उन्हें ध्यान कहते हैं। व्युत्थान संस्कार का तिरस्कार और निरोध संस्कार की प्रगटता हुए अंतःकरण का एकाग्रता रूप परिणाम समाधि कहिए हैं। उत्थान संस्कार का तिरस्कार, जेड़ा संकल्प उठ रहा उन कटदा जावे। उत्थान संस्कार, संस्कार जेड़े बैठे अंदर वो तो उठे जो उठना है ही आ, उन्हें कटदा जावे, ठीक है। और जेड़ी ब्रह्माकार बिरति उन्हें बनाता रहे, ठीक है। उत्थान संस्कार का तिरस्कार मैंने हटाना, ठीक है ना। और निरोध संस्कार की प्रगटता हुए अंतःकरण का एकाग्र रूप परिणाम समाधि कहिए हैं। सो समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल्प समाधि एक निर्विकल्प समाधि, ठीक है। एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि है। ज्ञाता ज्ञान के रूप त्रिपुटी भान सहित अद्वितीय ब्रह्म अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति। देखो ज्ञाता ज्ञान के रूप त्रिपुटी भान सहित जड़ी अंतःकरण की स्थिति है वो कहते सविकल्प समाधि, और त्रिपुटी भान से जो रहित समाधि है वो कड़ी निर्विकल्प, ठीक है। होना ही नहीं, अपने आप ही नहीं होना, सब कुछ नष्ट होगा तभी निर्विकल्प समाधि लगेगी ना। उसते शरीर का भान भी रहेगा, मैं बैठा हूं ये भी नहीं रहेगा। जे मैं बैठा हूं तो फिर तो सविकल्प हो गई, शरीर का भी भान हो रहा समाधि भी लगी है। शरीर का भी भान हो रहा भी मैं बैठा हूं तो वह होगी सविकल्प। हाँ हाँ, जो तो शरीर का भी भान ना हो कहते निर्विकल्प, ठीक है। समाधि दो प्रकार की है, एक तो शब्दानुबिद्ध और दूसरी शब्दानुबिद्ध। फिर दो प्रकार करते, पहला सविकल्प निर्विकल्प, अब निर्विकल्प नु दो प्रकार फिर कर रहे हैं। केड़ी शब्दानुबिद्ध और शब्दानुबिद्ध। शब्द से होने वाली, एक शब्द तो बगैर होने वाली। शब्द केड़ा है, देखो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये चिंतन हो रहा अंदर। इस शब्द कर करके अनुविद्ध कहिए सहित होवे सो शब्द अनुविद्ध कहिए हैं। शब्द रहित को शब्द अनुविद्ध कहे हैं। त्रिपुटी भान रहित, देखो की कह रहे हैं, त्रिपुटी भान रहित, त्रिपुटी का बिना भान होवे, शरीर का बिना भान होवे। जो त्रिपुटी का भान नहीं होगा शरीर का कैसे हो जाएगा फिर। शरीर के नाल इंद्रियां लगियां, तो इंद्रियां का भान होगा तो त्रिपुटी का भी होगा, तो जो शरीर का ही भान नहीं हो रहा। त्रिपुटी भान रहित अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति वृत्ति की स्थिति निर्विकल्प समाधि कही है। ये हो गया निर्विकल्प समाधि, ठीक है जी। इस रीति से सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के दो भेद हैं, तिनमें सविकल्प समाधि साधन है और निर्विकल्प समाधि फल। सविकल्प समाधि नु साधन में चल लिया, तो निर्विकल्प समाधि फल, क्योंकि मुक्ति तो निर्विकल्प ना होगी ना, ठीक है ना। साधन रूप जो सविकल्प समाधि है ता के विषय यद्यपि त्रिपुटी रूप द्वैत प्रतीत होवे हैं। देखो सविकल्प में त्रिपुटी द्वैत प्रतीत होगा, भी तो त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान गे सब प्रतीत हो रहा, तो संसार प्रतीत हो ही रहा फिर, ठीक है ना। तथापि सो द्वैत इस रीति से ब्रह्म रूप करके प्रतीत होवे हैं, पर द्वैत प्रतीत हो रहा है, पर कैसे प्रतीत हो रहा, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ऐसे करके। ते जदों शिशुपति च गाढ़ निंद्रा सौ जाते जे उदों फिर द्वैत प्रतीत हुंदा, वो है निर्विकल्प समाधि का भेद। जैसे मृतिका विकारण को मृत कार्य रूप जाने विवेकी को मृतिका के विकार घट आदि प्रतीत भी होवे हैं, परंतु मृतिकारिक रूप ही प्रतीत होवे हैं। वो कह रहा जैसे कोई मिट्टी के बर्तन पए है, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन पए है, तो जेड़ा देख रहा वो की देख रहा है, जेड़ा जानकार है वो देख रहा बर्तना नू नहीं देख रहा, एक तो बर्तना नू देख रहा है, बर्तना नू देखना सविकल्प समाधि, एक सारे दे विच मिट्टी देख रहा है वो निर्विकल्प समाधि है। सारे नू अलग अलग देख रहा, जितने जीव है मेरा ही स्वरूप है, एक देख रहा कोई नहीं मेरे तो बगैर है ही कोई नहीं, ये निर्विकल्प समाधि है, ठीक है ना। तैसे सविकल्प समाधि त्रिपुटी द्वैत ब्रह्म रूप ही प्रतीत होवे हैं। निर्विकल्प समाधि विषय भी सविकल्प समाधि की न्याय त्रिपुटी रूप द्वैत विद्यमान भी होवे हैं, तो भी त्रिपुटी द्वैत की प्रतीति होवे नहीं। जैसे जल में लवण को घेरे, जैसे जल दे विच लून की डली सुट दी, ठीक है, तहां लवण विद्यमान होवे हैं, परंतु नेत्र से लवण की सर्वथा प्रतीति होवे नहीं। विच ते घुल गया ना, यही हाल है, जदों निर्विकल्प समाधि लगी उदों प्रपंच ते बनया ही है, संसार तो नष्ट नहीं होया, पर वो सब ब्रह्मकार ब्रह्माकारी दिखाई देगा। जल दे विच लून तो है, पर देख की रहा जल ही जल, लून तो है ही उहदे च, पर लून तो नहीं अखां नाल दिखाई दे रहा, पर वो प्रपंच उदों सविकल्प निर्विकल्प समाधि में प्रपंच तो है, भी संसार कित्थे दौड़ जाएगा, पर दिखाई की दे रहा ब्रह्म रूप करके। इस रीति से सविकल्प निर्विकल्प समाधि का भेद सिद्ध हुआ। सविकल्प समाधि में ब्रह्म रूप करके द्वैत की प्रतीति होवे है, और निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी रूप द्वैत की अप्रतीति होवे है, उच्च प्रतीति कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब सुषुप्ति में और निर्विकल्प समाधि में भेद दस रहे हैं, क्यों ऐसे दस रहे हैं, वो कह रहे हैं उदा तुसी लगाई नहीं, तो सुषुप्ति की समाधि तुसी रोज लगाउंदे जे, कदी कदी दिने भी लगा लेंदे, कदी कदी समाधि मान लो, हां वो ओदे विच तो समाधि विच की अंतर है ये दसन लगे हैं। सुषुप्ति में निर्विकल्प समाधि का भेद, तैसे सुषुप्ति में निर्विकल्प का जह भेद है, सुषुप्ति में अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति का अभाव होवे है। सुषुप्ति में कोई अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार बनी, ब्रह्माकार कैसे बनेगी, उसे अंतःकरण लीन हो गया, जिसकी वृत्ति बननी सी वही चीज लीन होगी, ठीक है ना। निर्विकल्प समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति तो अंतःकरण की होवे है, ताका बान होवे नहीं, फर्क दोनों च इन्ना ही है, अंतःकरण सुषुप्ति दे विच लीन हो गया, तो निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण लीन तो नहीं होया, पर उसकी वृत्ति का ही पता नहीं चल रहा, वृत्ति है कि नहीं है। इस रीति से सुषुप्ति तो वृत्ति सहित अंतःकरण का अभाव होवे है, और निर्विकल्प समाधि में वृत्ति सहित अंतःकरण तो होवे है, ताकि प्रतीति होवे नहीं, पर उदा प्रतीति नहीं हो रही है तो जरूर, जैसे लून तो है पानी दे विच, पर पानी पानी दिखाई दे रहा, लून थोड़ी दिखाई दे रहा। निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण की जो ब्रह्माकार वृत्ति होवे है, ताका हेतु सविकल्प समाधि का अभ्यास है। पहले सविकल्प समाधि लगेगी, फिर निर्विकल्प जाओगे ना, ठीक है ना, जहाँ ते साधन रूप अष्ट अंग में सविकल्प समाधि गिनी है, निर्विकल्प समाधि फल है। ठीक है जी, कितना कराया गया? चलो जी, मैं भी थक गया। निर्विकल्प समाधि दो प्रकार की है, फिर अब दो प्रकार की समाधि, फिर निर्विकल्प नु भी दो प्रकार ले रहे हैं, आगे फिर उसका दो प्रकार करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल अलग करके दिखा देंगे, तभी तो गल बनेगी। और निर्विकल्प समाधि दो प्रकार की, सो निर्विकल्प समाधि भी दो प्रकार की होवे हैं, एक अद्वैत भान रूप और दूसरी अद्वैत अवस्थान रूप होवे हैं। अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण की अज्ञात वृत्ति सहित होवे हैं, सो अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कहिए हैं। जहाँ समाधि में अभ्यास अधिक हुए थे, ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो जावे हैं, जाते वृत्ति रहित को अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि कहे हैं। जैसे